कल क्या सुना था? कुमार जीवन में क्या करना है? केवल मन को देखना है, शरीर को देखना अर्थात सांप को देखना। सांप को देखेंगे तो सांप बन जाएंगे, विष आ जाएगा। इसके लिए मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। तो ये एक बाबा ने प्रतिज्ञा करने के लिए कहा था। अब खुद से प्रतिज्ञा करो कि आज से मणि के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखेंगे, और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि को चमकाएंगे। अभी आगे उसी मुरली से 16 अक्टूबर 1969 की हर एक सेवा केंद्र से यह समाचार आना चाहिए। कौन सा समाचार पहुंच जाना चाहिए बाबा के पास? कुमारों के बारे में, ये कुमार निर्विघ्न है। और क्या ध्रुव भाई, क्या पहुंचना चाहिए बाबा के पास समाचार कुमारों के बारे में? एक एक कुमार ध्रुव तारा द्रुत गति से आगे बढ़ने वाले। और अशोक भाई, बाबा के पास कुमारों के बारे में क्या समाचार पहुंच जाना चाहिए? ये कुमार संपूर्ण पवित्र है। ऐसा। और मणि भाई, क्या पहुंच जाना चाहिए बाबा के पास? एक एक कुमार बहादुर है। बहादुर अर्थात आज की मुरली से बहादुर किसे कहा जाएगा? मंजू बहन अभी आया नहीं, वेट करते हैं तब तक। तो बाबा कह रहे हर एक सेवा केंद्र से यह समाचार आना चाहिए कि यह कुमार तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। तो क्या समाचार आना चाहिए कि ये कुमार अवतरित है? और कुमारिया
पहले से
अवतरित है, यही के रहने वाली। शिव शक्ति भी अवतार है। अभी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण दे रहे बाबा, जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं। ब्रह्मा भी लोन लेता है और शिव बाबा भी लोन लेते हैं। पहले ब्रह्मा को बड़ा नशा था कि मेरे शरीर का लोन लेते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मुझे भी एक दिन लोन लेना पड़ेगा। यह पता था। तो जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। किस लिए? किस लिए आते हैं बाबा? मिलन मनाने के लिए। और किस क्या किस करने के लिए? निहारने के लिए नहीं। अभी 31 को जो मुरली चली है उससे किस लिए आते हैं, कौन बताएगा? दृष्टि देने के लिए और दृष्टि लेने के लिए। ये उसका एक महान कार्य है जिसके लिए वो आ रहा है। राम जन्म ते हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। मानस में लिखा हुआ है राम जन्म के जो उद्देश्य है बहुत सारे, हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक एक उद्देश्य उसका एक से बढ़कर एक है, अनूठे है, अपूर्व है उद्देश्य। किस लिए आते हैं? तो बाबा कह रहे हैं मिलने के लिए। वैसे तो आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं, थोड़े समय के लिए। हमेशा समझो कि हम लोन लेकर आए हैं और थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया है, या लेने का किया है देने का नहीं। 6 मास तक एक रस रहेंगे ना, कि 15 दिन के बाद लिखेंगे, चाहते तो है लेकिन क्या करे यह हो गया। ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आए, कोई भी कंप्लेंट नहीं आए, फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। लास्ट संडे की मुरली में था ना, दादी के पास किससे कहानियां लेके आते हैं तो बीमार होती है, तो किससे कहानियां खत्म, अभी नए भी पक्के हो गए, पुराने भी पक्के हो गए, अनुभवी हो गए, क्वेश्चन नहीं है अभी। ब्राह्मण कल्चर में आ गए, समान और स्वराज्य अधिकार में आ गए, उस फॉरेन उस कल्चर में गड़बड़ है, इंडियन कल्चर या फिर फॉरेन के कल्चर। तो बाबा कह रहे कंप्लेंट सभी समाप्त कंप्लीट, आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। जब हम भारी होते हैं तो हमारे आसपास वाले भी भारी हो जाते हैं। अगर कोई इंचार्ज भारी हो जाए तो फिर तो पूछो मत, पूरा डिपार्टमेंट भारी। इसके लिए जो जहां पर इंचार्ज है, हेड है, उसको सबसे पहले हल्का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। देखा गया है कि जो इंचार्ज जैसा है वैसा वो डिपार्टमेंट होता है। अगर उसने हड़बड़ी, अगर उसमें योग में बहुत इंटरेस्ट है तो सारा डिपार्टमेंट योगी, अगर उसको ज्ञान में इंटरेस्ट है तो सारा डिपार्टमेंट ज्ञानी, अगर उसको बस कर्म में इंटरेस्ट है तो बाकी सब भी केवल कर्म, अगर उसको व्यर्थ में इंटरेस्ट है तो व्यर्थ, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो सब उसको फॉलो करते हैं जैसा वो, उस पर बहुत बड़ा आधार है। आप खुद भारी होंगे तो कुमुद बहन क्या हो जाएगा, आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। बाप दादा की आशा कहे व शुद्ध संकल्प कहे, यही रहता है और रहेगा कि एक एक कौन सा नंबर ले, नंबर वन हो, एक एक नंबर वन हो। कहाँ बैठे हो कमलेश भाई, 31 की मुरली से कहाँ बैठे हो, कुर्सी पर, आगे का वाक्य, आगे का वाक्य, प्यार के नंबर से उसी उसी वहीं उसी जगह पर बैठे हो, प्यार प्यार के नंबर से उसी की जगह, वो देख लो किसका कितना नंबर है। तो बाबा क्या चाहते हैं कि एक एक नंबर वन हो, लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वह तो अब के हिसाब से नंबर वन है ही, जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। इसके लिए कह रहे हैं सभी यह लक्ष्य रखे कि हम नंबर वन जाएंगे। यह नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर वन जाएंगे, प्रश्न तो बहुत ही तार्किक लॉजिकल है कि सभी नंबर वन कैसे जाएंगे, इसमें क्या नहीं बनना, दूसरों के बीच में रहन दिल नहीं बनना, और इसमें क्या नहीं बनना कि दूसरों को नंबर वन जाने दो, हम क्यों जाए, नहीं हम हमको तो दूसरों को आगे बढ़ाना है ना। बाबा ने कहा है दूसरों को आगे बढ़ो तो खुद आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी नंबर वन हो, इसमें यह नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर वन जाएंगे, इसमें डैश नहीं बनना है, इसमें पहले आप नहीं करना है और रहन दिल नहीं बनना है, और इसमें
बनना
नहीं बनना है, कौन सा गुण नहीं धारण करना है यहाँ पर,
अच्छा फॉलो,
परोपकारी नहीं बनना है इसमें, हाँ ये भी राइट है, इसमें परोपकारी नहीं बनना है, दूसरों को आगे जाने दो, उसमें उदार चित्त नहीं होना है, इसमें संतुष्ट नहीं होना है, इसमें पहले आप नहीं करना है, इसमें रहम दिल नहीं बनना है, कौन सा दूसरा एक गुण धारण करना है। पिछले संडे के पिछले संडे की मुरली का हेडिंग दाता, इसमें महादानी नहीं बनना है, इसमें महादानी नहीं बनना है कि दूसरों को आगे नहीं, दूसरे आगे बढ़ जाए। तो ध्रुव भाई इसमें महादानी नहीं बनना कि सभी आगे क्लास में चले जाए मैं तो पीछे रहूंगा, बहुत अच्छा है हम पूर्वज है, सब आगे बढ़ जाए, सबको विजय मिल जाए। बाबा कह रहे हैं कि सभी यह लक्ष्य रखे कि हम नंबर वन जाएंगे, यह नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर वन जाएंगे, इसमें महादानी नहीं बनना है। दो बातें मुख्य याद रखना है, एक तो कही मणि वाली बात और दूसरी अब कही अवतार वाली बात। मणि की बात स्वयं के लिए, अवतार की मणि की बात दूसरों कैसे, दूसरों को कैसे देखे उसके लिए, और अवतार की स्वयं के लिए। तो दो बातें, एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को न देखना, देह रूपी सांप को न देखना। सांप ने अगर काटा, रिकवरी पीरियड बहुत लंबा है, एक बार काटने के बाद बहुत टाइम लगता है। कोई कोई तो देवेंद्र भाई क्या हो जाते, कोई कोई तो तुरंत मृत्यु, पहुंचने से पहले ही मृत्यु, अस्पताल में आने से पहले ही ब्रॉड डेड जिसको कहा जाता है, ब्रॉड डेड का सर्टिफिकेट देना पड़ता है अलग से कि मृत्यु पहले ही हो गई है अस्पताल में पहुंचने से पहले, उसका अलग एक फॉर्म है, ब्रॉड डेड कहा जाता है इसमें, मतलब आया तभी जिंदा था ही नहीं, पहले से ही मरा हुआ है, ब्रॉड डेड जिसको कहते हैं। तो ये विष इतना घातक है कि काटा तो तुरंत मृत्यु। और दूसरी बात, अपने को अवतरित समझो, अवतार समझो, इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। इस मुरली में बाबा ने ये दो बातें कही है, एक तो मणि की बात, दूसरी अवतार की बात, तीसरा एक स्लोगन दिया है और चौथा एक ड्रिल कराई है। इससे पहले कि हम स्लोगन और ड्रिल पर जाएं, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि स्वयं को अवतार समझना अर्थात क्या। बाबा कह रहे हैं स्वयं को क्या समझो, अवतार। मैं इस तन में अवतीर्ण हुई हूं, मैं आत्मा इस तन में अवतरित आत्मा हूं। अवतार का क्या अर्थ होता है? एक बहुत बड़ी सीरीज चली थी ना, एक मास जनवरी में चली थी अवतार की, यज्ञ की, यज्ञ में विदेश में अवतार की सीरीज है टोटल, एक हर दिन में एक एक समान तीन बातें उसमें थी और फिर तीनों का मिला के क्या होता है, जैसे एक दिन साकारी आकारी निराकारी निरंकारी निर्विकारी इस तरह से अलग 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 हर दिन के लिए दो 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 तीन 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 समान पूरा 36 दिन चली शायद अवतार की सीरीज जनवरी में चली है अवतार की पूरी सीरीज। तो एक एक दिन में उसके लिए एक 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 अभ्यास दिया हुआ है और फिर उसका क्या परिणाम है वो दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ऐसा उसमें इक्वेशन मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जैसा। तो अवतार अर्थात, अवतार का अर्थ क्या, अवतार अर्थात उतरना, अवतार अवतार उपसर्ग लगा है तार, अवतार त्रु से त्रु धातु से शब्द निकला है, अवतार अर्थात डिसेंड उतरना, नीचे आना धरती पर उतरना, जो यहां नहीं है। ये शब्द देवताओं के लिए ईश्वर के लिए भक्ति में जो इस संसार की आत्माएं नहीं है उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है जो ऊपर से आते हैं। अब ये शब्द भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म में अवतारवाद है, इस्लाम में अवतारवाद नहीं है, ईसाई धर्म में अवतारवाद नहीं है, यहूदियों में अवतारवाद नहीं है, वहां कौन सा है, वहां पैगंबर है, वहां पैगंबर खुदा जो है ईश्वर जो है गॉड जो है वो अपने पैगंबर अपने संदेशवाहकों को भेजता है, वो खुद कभी नहीं आता है, वो खुद नहीं आता है नीचे, यहां पर स्वयं आता है, वो स्वयं अवतरित होता है। वो आत्मा उस ब्राह्मण में आ सकती है तो मैं नहीं आ सकता, कल था ना, वो आत्मा है उस ब्राह्मण में आती है श्राद्ध में, तो क्या मैं नहीं आ सकता हूं, क्वेश्चन पूछा, आगे बोला मैं भी आता हूं फुल स्टॉप। पर बाबा ने क्या कहा था, मैं भी आता हूं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब एक्सट्रीम इररिलीजियसनेस धर्म की ग्लानी होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत, भारत में जब होता है ऐसा, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्रानाय साधुनाथ, जो साधु हो तो पहले से ही पवित्र है वास्तव में, परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम्यहम्, जो दुष्ट है उनका संहार करने मैं अवतरित होता हूं। तो अवतार अर्थात जो यहां है नहीं, जो ऊपर से आता है, ये शब्द हिंदू धर्म में अवतारवाद है, परमात्मा के लिए ईश्वर के लिए भगवान के लिए कहा जाते हैं कि भगवान अवतरित होते हैं। विष्णु के कई सारे अवतार है, शिव के कई सारे अवतार बताए, आगे तो पूछो मत, गणेश के भी कई सारे अवतार है, हनुमान के भी दूसरे कुछ अवतार है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताए हैं विष्णु के अवतार, 24 अवतार मुख्य बताए, उसमें दश अवतार जो है वो उसमें भी मुख्य है, उसमें सबसे मुख्य है एक, सबसे मुख्य, बाकी सब अंश अवतार है। अवतार में भी दो विभाग होते हैं, एक अंश अवतार और दूसरा पूर्ण अवतार। अंश अवतार कलाओं के ऊपर आधारित है, आठ कला अर्थात मनुष्य कोटि, आठ के ऊपर जो कलाएं चालू होती है वो ईश्वर कोटि है, आठ से नौ से पंद्रह तक जो कलाएं हैं वो अंश अवतार है, 16 कला जो है वो पूर्ण अवतार है, 24 अवतारों में से एक ही 16 कला अवतार है संपूर्ण, वो है श्री कृष्ण। इसके लिए श्री कृष्ण की जो पर्सनैलिटी है वो सभी को स्वीकार्य है, भारत में बहुआयामी उसकी व्यक्तित्व है, भले राम का बहुत सारे भक्त है परंतु कृष्ण के जितने भक्त है उतने हो नहीं सकते, कृष्ण के जितने मंदिर है उसने शायद ही किसी और देवता के है, सबसे ज्यादा खींचने वाला सबसे अधिक प्रिय जो है वो श्री कृष्ण की प्रतिमा है संसार में, इतना आकर्षक है क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो मल्टी डायमेंशनल फिगर है, बहुआयामी है, राम जो है वो एक सुर एक आयामी है। राम भले बहुत अच्छे हैं परंतु उसके सारे राम के पीछे नहीं जा सकते, उनको कृष्ण जैसा व्यक्तित्व चाहिए, तो कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। तो अवतार दो प्रकार है, एक है अंश अवतार एक है पूर्ण अवतार, राम को 14 कला संपूर्ण कहा है, भक्ति में भी कहा हुआ है, हम तो ज्ञान की बात नहीं कर रहे अभी भक्ति की बात कर रहे, वहां पर भी राम जो है संपूर्ण अवतार नहीं है, संपूर्ण अवतार से केवल और केवल श्री कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा है एक चोर को भी वो पसंद आता है, क्योंकि उसके काम की चीजें उसके व्यक्तित्व से निकाल सकता है, एक आतंकवादी है वो भी कृष्ण का उदाहरण दे सकता है वो क्यों मार रहा है सबको, सूरदास जो है उसके लिए भी कृष्ण बहुत प्रिय है क्योंकि उसका कृष्ण बहुत छोटा है, वो गोपियों से डरता है, सूरदास का कृष्ण जो है वो छोटा बालक है, गोपियां हैं उनको भी कृष्ण प्रिय है क्योंकि वो उनको पति के रूप में अपने साजन के रूप में देखती है, तो वो कृष्ण, राम को इस तरह से नहीं देखा जा सकता, राम केवल एक ही है मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ही जैसा चरित्र है बस, सभी उसे नहीं प्यार कर सकते, आतंकवादी को श्री राम का चरित्र अगर सामने रखे तो उसको तो वो छोड़ना पड़ेगा प्रोफेशन उसका, पॉलिटिशियंस को छोड़ना पड़ेगा अपना प्रोफेशन, हाँ पॉलिटिशियंस को कृष्ण जरूर प्रिय है क्योंकि ऐसी चाले खेलता है सारा महाबुद्ध महाभारत अगर देखा जाए तो दो ही व्यक्तियों के बीच है, एक तरफ शकुनी है और एक तरफ श्री कृष्ण है, बस बाकी सब हटा दो, ये दोनों की ही चाले है। तो एक संगीतज्ञ को भी श्री कृष्ण प्रिय है, एक डांसर जो है मॉडर्न उसको राम प्रिय लगना मुश्किल है परंतु श्री कृष्ण उसे भी प्रिय है, जो गायक है उसे भी श्री कृष्ण प्रिय है, जो प्रेमी है जो प्रेम करते हैं संसार में युवक आशिक नाशुक वो भी श्री कृष्ण का ही उदाहरण देते हैं, जो विचारज्ञ है जो थिंकर है मर्मज्ञ है जो ऐसे मनस्वी तपस्वी है उनको भी श्री कृष्ण प्रिय है, जो योगी है योग तपस्या करते उनके लिए श्री कृष्ण परम योगी है, योगेश्वर है वो सबके बीच में रहते हुए भी योगी, जो तपस्या करने वाले उनके लिए, जो विचारक है उनके लिए, जो गीता जो पाठ करते हैं शास्त्रों का उनके लिए गीता सर्व शास्त्र शिरोमणि है, वो गाई किसने उसी ने गाई, इसके लिए उनको उसको भी उनको भी वही प्रिय है, बहुआयामी व्यक्तित्व है मल्टी डायमेंशनल फिगर। तो इसके लिए भारत में सभी को कृष्ण ने एकदम पागल कर रखा है कई सालों से, लॉर्ड कृष्ण ने लॉर्ड राम भी बोलते हैं परंतु आप एस्कॉन में अगर चले जाओ, एस्कॉन सुना है ना, हरे कृष्ण मूवमेंट है, उनका एक महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है इस मंत्र में जो राम है वो राम कौन है, नहीं शिव बाबा को तो थोड़ी मानते हैं, वो तो एकदम एकदम कृष्ण के परम भक्त है, वो कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं मानते संसार में, बाकी सब आर डेमी गॉड्स अकॉर्डिंग इन द वर्ड्स ऑफ प्रभुपाद स्वामी जो है उनके उसके शब्दों में बाकी सब डेमी गॉड्स है छोटे छोटे, वो तो बस द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एक ही है श्री कृष्ण। उनका जो राम है वो श्री राम नहीं है 24 अवतारों में का, वो जो बलराम है उसके लिए वो राम कहते हैं। उनको राम से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, वो केवल मानते हैं वो एक अंश अवतार है, पूर्ण अवतार केवल श्री कृष्ण है। उनकी मान्यता यहां तक है कि कृष्ण विष्णु के भी अवतार नहीं है, कृष्ण तो सदैव है ही वो गोलोक में, उसके ये सारे अवतार है। यहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री कृष्ण से निकले हुए हैं। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है श्री कृष्ण ही परम है, मुख्य वही है, उससे ये सब कुछ निकला हुआ है। ऐसे संसार में भारत में इसको कहा जाता है अवतारवाद। बाबा किसको अवतार के, परंतु वो जो दूसरे देवी वाले भक्त है वो उसके विरोध में है। वो क्या कहते हैं कि देखो कृष्ण वाले कहते हैं देखो हमारा कृष्ण सबको नैया पार कराता है, वो खिवैया है संसार का। देवी के भक्त कहते हैं हमारी देवी थोड़ी ना जाए कि कृष्ण को रखा है उसने नैया पार कराने, वो भी उसकी आज्ञा से करता है। वो कहता है हम बड़े, वो कहता है हम बड़े। तो भारत में अवतारवाद की मान्यता है कि भगवान स्वयं अवतरित होकर आते हैं। विप्रसंत सुरधेनु हित प्रभुधरी विविध शरीर, प्रभुधरी मनुज शरीर, मनुष्य का शरीर धारण करता है। बाबा कह रहे हैं तुम अवतार हो, तो जो कि ईश्वर की का टाइटल है, उपाधि है, वो हमको दे रहे, अपने आप को अवतरित समझो। अवतार की क्या क्या विशेषता होती है, अवतार जब से आता है अवेकंड एनलाइटेंड स्टेट में आता है, वो कभी भी स्वयं हुआ नहीं रहता है, उसे निरंतर याद है मैं किस लिए आया हूं, जन्म से ही याद है। उसके जन्म की विधि भी बहुत ही दिव्य होती है, वो ऐसे ही नहीं आता है बाकियों के जैसा, बहुत मतलब आकाश में थोड़ी बिजली वगैरह, थोड़ी इधर उधर बारिश, थोड़ी आकाशवाणी होगी, कुछ स्पेशल इफेक्ट। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, पावन काल अति शीत नाघामा, देही काल लोक विश्रामा। राम का वर्णन रामचरितमानस में है, ऐसे समय पर राम का जन्म हुआ है। पावन काल अति शीत नाघामा, देही काल लोक विश्रामा, जिस समय लोग दोपहर के समय में राम का जन्म है वहां लोक विश्राम कर रहे। नवमी तिथि है, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष है, भगवान का प्रिय अभिजीत नक्षत्र है, तब श्री राम का जन्म है। हमारा जब जन्म हुआ बचपन से हमको बताते थे जब तुम्हारा, हमारी माता जी बताती जब तुम्हारा जन्म हुआ ना हमारे गांव में बिल्कुल ही बारिश नहीं थी, और जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ उस समय एकदम मूसलाधार बारिश हुई, तो हम बहुत ही खुश रहते थे कि देखो जैसे हमारा जन्म हुआ बहुत बारिश हुई। एक बार ऐसा हुआ गाँव का एक बूढ़ा आदमी हमारे घर में आया और उसको हमने ये बात बताई कि जब मेरा जन्म हुआ ना तो बहुत और कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। उसने कहा रहा था अरे मुझे मैं था जब तुम्हारा जन्म हुआ, तब नहीं हुई थी शाम को हुई थी। सारे हमारी खुशी को हमारा नशा किटकिला कर दिया पूरा। ये तो कितना नशा था, हमको हमारी माता जी ने बचपन से बता रखा था जब तुम्हारा जन्म हुआ तो बहुत बारिश हुई थी, जैसे महान आत्मा का होता है ना वैसे।
दिन तो वही था ना,
दिन तो वही था। पर उसी समय होने का जो नशा था ना वो थोड़ा ये हो गया ना, पूरा किरकिरा हो गया। तो वो उतना नहीं पता हमको। तो महान आत्माएं जब जन्म लेती है तब संसार में दिखाया, भारतीय संस्कृति में प्रकृति में भी कुछ परिवर्तन होता है। कृष्ण का जन्म भी ऐसे ही दिखाया हुआ है। सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, भागवत में लिखा है कृष्ण का जन्म का वर्णन नहीं है कि कृष्ण जन्म दे रहे हैं, नहीं, परम सत्य का आविर्भाव, परम सत्य का प्रागट्य हो रहा है। सत्यव्रतम त्रिसत्यम, जो तीनों लोकों में सत्य है ऐसा सत्य, सत्यस्य योनिम, सत्य योनि, सत्य गर्भ है, उस सत्य गर्भ से सत्य की स्थापना करने परम सत्य प्रकट हो रहा है, कृष्ण प्रकट हो रहा है ऐसा वर्णन नहीं है। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, तो श्री कृष्ण का जन्म भी इस तरह दिखाया है। तो एक तो जन्म, जन्म कर्म च दिव्य च, गीता में लिखा है हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। तो अवतार अर्थात जन्म दिव्य, अवतार अर्थात अवेकन स्टेज, कभी भी सोते नहीं है, निरंतर उनको अपने उद्देश्य का पता है। अवतार अर्थात सारे जो कर्म है, कृष्ण के कर्म देखो तो सारे ही दिव्य है। ऐसे कर्म करता है जो कोई और नहीं कर सकता है। इतने सारे राक्षस एक के बाद आते हैं, सबको खत्म करता है। और विजयी, उसको नशा है विजय का, कभी दुखी नहीं होता। ये क्यों भेज रहा है कंस, कभी दुखी देखा उसको? वो तो एकदम खुशी में, आनंद में, निरंतर आनंदमय स्थिति है अवतार की बचपन से। और जब जाने का समय आता है, गोकुल को छोड़कर जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है, किसको याद नहीं करता है, बस पाठ पूरा हुआ। दिखाया है सांदीपानी के आश्रम में जब श्री कृष्ण जाता है तो सुदामा वहां उसको मिलता है, कहता है कि हमने सुना है तुमने गोकुल में बहुत लीला है, कि हमने सुना है तुम बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाते हो, बांसुरी अभी बजा के बताओ। वो कहता है अब नहीं बजा सकता। वो गोकुल का पाठ पूरा हुआ, वो गोपियों का पाठ पूरा हुआ, अब ना रास कर रहा हूं, ना ही बांसुरी बजा रहा हूं, ना ही वो लीला, वो पाठ वही था, पूरा हो गया, नष्टो मोह। कभी याद नहीं किया उन गोपियों को बाद में, उनके साथ जो पाठ था वहां पूरा हुआ। अवतार अर्थात आज यहाँ है, कल यहाँ की सेवा पूरी हुई, अब उधर, यहाँ का भूल जाओ, यहाँ से अब कोई लेना देना नहीं, यहाँ के व्यक्तियों से नहीं, कुछ नहीं, संपूर्ण नष्ट हुआ। वो बालक, वो जो हो गया था वो बचपना था, वो पूरा हुआ। अभी ये पार्ट, उसके बाद में वो पार्ट। महाभारत में सबसे मुख्य भूमिका श्री कृष्ण की दिखाई है, वो ना होता तो ये युद्ध ही नहीं होता। पांडव तो एकदम ही भोले भाले दिखाए, उनको कहां समझ में आती थी ये चाले, इसीने तो समझाए एक एक बात, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। तो अवतार समझना स्वयं को, अर्थात मैं इस धरती पर, इस धरती का मैं नहीं हूं, सबसे पहला तो ये, मैं इस तन में आई हूं, मैं अवतार हूं, मेरा आविर्भाव प्रागट्य इस तन में हुआ है, अवतीर्ण हुई हूं इस तन में। तीसरा, मैं किस उद्देश्य से आया हूं, इसको भूलना नहीं है। ये जो लौकिक संबंधी है, ये तो इस जन्म के, इसके पहले जन्म में कोई और माँ बाप, उसके पहले जन्म में कोई और माँ बाप, कोई और दूसरे मित्र थे, भाई बहन थे, अभी तो केवल एक जन्म के है। ये सारी स्मृतियां रखनी, ये अवतार के लक्षण है, उद्देश्य को निरंतर सामने रखना। वो निरंतर रिस्पॉन्सिबल रहता है, कभी भी कंफ्यूज्ड। इस संसार का कोई आकर्षण उसे आकर्षित नहीं करता। कल की मुरली में वरदान में था ना, तुच्छ समझते हैं संसार को, असार समझते हैं संसार को, आगे बढ़ते रहते हैं निरंतर, लोकलाज की कोई परवाह नहीं है। कृष्ण कभी सोचता है लोग क्या कहेंगे? कभी नहीं सोचता है, जो कि पूर्ण अवतार बताया हुआ है। तो हम भी संपूर्ण अवतार है इस तन में, इस तन में अवतार है, अर्थात तन से भी कोई लेना देना नहीं है, केवल रहना है इस संसार में। महान कार्य के लिए हम इस शरीर में है, और हमारे कर्तव्य बहुत महान है। एक एक कर्तव्य की अगर स्मृति स्वयं को दिलाते रहे, जो भगवान के कार्य है वही हमारे कार्य है। विश्व कल्याण कितना ऊंचा कार्य है, क्या कर लिया इस कार्य को जो सोए पड़े हैं? कैसे हम सो सकते हैं? जागृत अवस्था, एनलाइटेंड स्टेज, अर्थात ये सारा ज्ञान स्मरण में रहना, स्मृति में रहना, इसके लिए निरंतर स्वयं को जगा कर रखना, कभी भी भूलना नहीं, उसके लिए निरंतर अध्ययन की आवश्यकता है, श्रेष्ठ संग की आवश्यकता है, महान चिंतन की आवश्यकता है, एकांत की आवश्यकता है, अंतर्मुक्ता की आवश्यकता है। तो बाबा ने हमें दो बातें कहने को करने को कही है। सबसे पहले सबको मणि देखना, कर्म करते हुए भी स्वयं को भी मणि समझना और सबको मणि देखना। दूसरा कार्य अवतार समझना, मैं महान कार्य के लिए अवतरित हुई हूं, आज ही अवतार लिया मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले, और आज ही महान कार्य करने हैं, ये समान है। तो निखिलेश भाई, मैं अवतार हूं। कौन सा अवतार? एक अवतार आना अभी संसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार एक अवतार अभी बाकी आना, कल की अवतार जो 23 आ चुके हैं, एक बाकी है,
कब आए
वो उनके हिसाब से अभी पता नहीं कब आएगा, अभी टाइम
अंधकार जब हो जाए तो समझो मैं ही अवतार हूं, इसलिए आए हैं हम अंधकार को
मिटाने के लिए,
प्रकाश लाने के लिए। तो ये दो समान,
एक
अवतार बाकी,
हाँ कलम की कहो कल की कहो, इस्लाम वाले कहते हैं वो मोहम्मद पैगंबर जो थे वही कल के अवतार थे, ऐसा उनका कहना है।
तो इस
वो कलंक ही नहीं कल की अवतार कहते हैं उसको, जो कि एक सफेद घोड़े पर बैठ कर आएगा जिसके हाथ में तलवार होगी, ऐसा उसका वर्णन दिखाया। उसके माँ बाप का भी नाम बताते हैं, इस जगह इस पद्म पुराण में उसका वर्णन लिखा है, कहाँ होगा कैसे होगा, माँ का नाम कौन क्या होगा, पिताजी का नाम क्या होगा, वो सारा वर्णन उसमें लिखा हुआ है। तो हम स्वयं को अवतार समझे। नहीं, एपोकैलिप्स इज डिफरेंट। एपोकैलिप्स अर्थात महाविनाश। एपोकैलिप्स में एंटी क्राइस्ट का वर्णन किया हुआ है कि क्राइस्ट अभी जो है, बहुत सारे ऐसे आएंगे जो कहेंगे हम अवतार हैं, हम क्राइस्ट है, बट डू नॉट बिलीव इन देम। क्राइस्ट वो एक ही था, बस क्राइस्ट ही बस अंतिम है उनके हिसाब से। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जहां डिवाइड होती है वो एक ही बात है। वैसे तो सब कुछ समान है दोनों में, क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में सब कुछ समान है। वो भी इब्राहिम को मानते, सारे अब तक के जो पैगंबर है भगवान के सबको मानते हैं, परंतु डिवीजन कहां पर है कि इस्लाम कहता है कि क्राइस्ट एंड नहीं है, क्राइस्ट के बाद एक अंतिम पैगंबर है मोहम्मद, वो अंतिम पैगंबर है। परंतु क्रिश्चियनिटी कहती है नहीं, बस वही वहां सब कुछ है, ट्रिनिटी जिसको कहा है, एक होली गोस्ट गॉड एंड सन, फादर सन और होली गोस्ट, ये तीन यहां अंत हो गया है क्रिश्चियनिटी। परंतु इस्लाम कहता है नहीं, वो अंतिम नहीं था, अंतिम ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर, वो अंतिम है। तो वो एक मेन जो एपोकैलिप्स की बात खाली क्रिश्चियनिटी में, इधर वो उसको कयामत का समय कह रहे हैं। परंतु कोई नया आए वो उसका भी
क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में नहीं, तो वो तो एक दूसरा ही भाग है। हम बात कर रहे हैं अवतारवाद की, वो जो केवल भारत में और किसी भी धर्मशास्त्र में इसका वर्णन है। बौद्ध में एक उनकी जो बहुत सारे डिविजन है, एक डिविजन है उसने
उसको माना है बौद्धिज्म में, एक डिविजन है बौद्धिज्म का, वो कहता है कि हाँ अवतारवाद है, परंतु वो भी नहीं मानते हैं। परंतु भारत वाले इतने होशियार है कि उन्होंने बुद्ध को भी 10वां अवतार बना दिया है। उधर क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया और क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा रूप धारण कर ली, यहाँ पर बुद्ध को सूली पर नहीं चढ़ाया, पर बौद्ध धर्म को ही खत्म कर दिया भारत में। इसके लिए बौद्ध धर्म जो प्रलवित हुआ भारत में नहीं हुआ, चीन और जापान में हुआ, उधर हुआ। तो ये बहुत ही सूक्ष्म बातें है सारी। ओम शांति। दिव्य गुण, टीवी, डिवाइन वर्च्यू।